अगली सूरत पर चलते हैं, सूरत मारिज, मारिज सीढ़ी को कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालसाइलुम बिअज़ाबिन वाक़े लिल काफिरीन लैस लहू दाफ़े। मांगने वाले ने अजाब मांगा है, वो अजाब जो जरूर वाक़े होने वाला है, काफिरों के लिए है, इसे कोई दफा करने वाला नहीं उस अल्लाह की तरफ से जो अरूज के जीनों का मालिक है। मलाइका रूह उसके हजूर चढ़कर जाते एक ऐसे दिन में जिसकी मकदार 50,000 साल है। सोचिए, क्यामत के दिन की लंबाई 50,000 साल। कैसे खड़े होंगे उस दिन अल्लाह के सामने? आज तो 5 मिनट से ज्यादा का क्याम मुश्किल लगता है। पस नबी सबर करो, शाइस्ता सबर, यानी इनके रवैयों पे दिल ना दुखाएं, मुश्किलात की आंधियां तुम्हें पीछे ना पलटाएं। याद रखिए, आखरत का यकीन इंसान को जमाता है। दुनिया की टेम्पटेशन जो है ना, ये हमारे कदम ले लेती है। इसलिए सबको कहा गया कि इस दुनिया पे सब्र करो, अपने आप को किसी किनारे पे खड़ा करो। दैट्स ओके, दैट्स एनफ, एनफ इज एनफ, बस इससे ज्यादा नहीं। इसलिए सब्र देखने वाले को पता भी ना करें तो इस दुनिया के मामले को ना बनाए। रह गई क्यामत तो इन्नहुम यरौनहु बईदा, ये लोग इसे दूर समझते हैं। वह नराहु करीबा, हालांकि हम तो उसको करीब देख रहे हैं। वह अजाब उस रोज होगा जिस रोज आसमान पिघली हुई चांदी की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंग बिरंग के धुंके हुए ऊन जैसे हो जाएंगे। और कोई जिगरी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को ना पूछेगा। पीछे भी ये बात दूसरी है ना, हर सूरत में आप देखेंगे दोस्तियों का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह के रास्तों में आने वाली जो चीजें हैं उसके अंदर बहुत सारी बड़ी रुकावटें हमारी दोस्तों की वजह से होती हैं। हम वो महफिलें नहीं छोड़ पाते, वो गैदरिंग्स हमें अच्छी नहीं लगती, हमें अपनी दोस्तों की नजरों में बड़ा बनना अच्छा लगता है। का उस दिन कोई दोस्त ना पूछेगा किसी को, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। इमेजिन करें, मैदाने हशर है, सब खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, आपके फ्रेंड सब हैं, सब देख रहे हैं। यू बस सर ना हो, लेकिन वो शख्स जिसने जिंदगी जुर्म के साथ गुजारी उसकी हसरत क्या होगी। यवद्दुल मुजरिम लव यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी, मुजरिम चाहेगा उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने भाई को और अपने करीब तरीन खानदान को जो इसे पनाह देने वाला था। बल्कि वह मन फिल अर्दी जमीयन, बल्कि रुए जमीन के सब लोगों को फिदिये में दे दे। और सुम्मयुंजी, फिर वो निजात पा जाए, उसको बस बचा लिया जाए, सबको पकड़ा जाए। जरा सोचे, अपने बच्चों को अपने हाथ से आग में फिकता देखें। और ये कोई नहीं कह रहा कि अल्लाह एग्जैजरेशन करेंगे, क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला एक मुबालगा कर रहे हैं। यही है वो चीजें जो आखिरत से गाफिल करती हैं। क्यामत के दिन इंसान खड़ा हसरत करेगा, अल्लाह इनमें से एक एक को पकड़ के आग में डाल दे और सुम्मा युंजी, मुझे छोड़ दे। वो सब जज्बे खत्म हो जाएंगे जो दुनिया में होते हैं। कहा जाएगा कल्ला, हरगिस नहीं, नेवर, इन्ना हालसा, तेरे बदले आज कोई नहीं जलेगा, तुझे खुद जलना पड़ेगा। वो तो भड़कती हुई आग की नज़ात अलिशव काट देगी, चेहरे की खाल आग। जहन्नम से इंसान कितना भी दूर होगा कि उसके स्किन जो है ना चेहरे की, वो लटक के जल गल के उसके पाँव पे आई होगी। नज़ात अलिशवा, ये चेहरा ही था ना सबसे बड़ा जो लोगों को दिखाना चाहते थे, ये शक्ल ही तो दूसरों को दिखानी मुश्किल लगती थी अल्लाह वाली। इसलिए अल्लाह कहते हैं वहां तुम्हें पकड़ा जाएगा। और आप देखिए चेहरे में क्या है, सेंसेस, कान, आंखें, हाथ, दिमाग, ब्रेन, सब कुछ तो इसी में ही है। इधर से ही सोचें उभरती थी, इधर ही सब देखते थे, सुनते थे। अल्लाह कहते हैं इसको ही मैं जला के राख कर दूंगा। तदुमन बराबल्ला, पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगी हर उस शख्स को जिसने हक से मुंह मोड़ा और पीठ फेरी और माल जमा किया और सींत सींत कर रखा। जरा यहां लिस्ट तो बनाइए चीजों की, कैसे अल्लाह सुबहान तआला बता रहे हैं जहन्नम में ले जाने वाली चीजें, कि जो लोग मुंह फेरते थे, माल जमा करते, अब वो कैसे किया ये नहीं पता, और उसके बाद गिनते थे। फाउआ विया, उस थैली को कहते हैं जिसको पहले दौर में लोग गुथली कहते थे, बस उसमें माल डाल लीजिए, आज इसका नाम अकाउंट रख लीजिए, बैंक क्रेडिट रख लीजिए, कुछ भी रख लें। उसको हर वक्त अपने मुस्तकबिल की फिक्र थी, आगे क्या होगा, बस अगले 50 साल का माल है सिर्फ बच्चों के लिए, उसके बाद बेचारों का क्या होगा। दुनिया के मामले में इतने एम्बिशियस के हाय 50 साल के बाद हमारे बच्चों का क्या, और दुनिया में रहते हुए दुनिया की फिक्र करते करते दुनिया से चला गया। इन्नल इंसान खुली का हलुआ, बेशक इंसान बड़ा थुड़ दिला पैदा किया गया। इसका बहुत खूबसूरत इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का शिकार है। आज आप देखिए कि अक्सरियत एंग्जाइटी का शिकार है। 2010 में हमने जब दौरे कुरान किया था तो एक पूरा बारह एंग्जाइटी पे था, हलू जल्दी क्विक फौरन भागो, एड्स को देखिए, तस्वीरों को देखिए, फिल्मों में देखिए, इंसानों को, गाड़ियों को, हर एक हलू में एंग्शियस है, दुनिया को और ले लूं, और पालूं, और कर लूं, इधर करूं। अल्लाह कहते हैं स्टॉप प्लीज, रिलैक्स, काम, क्वाइट। कितना दुनिया के लिए भागोगे उतनी मिलेगी जितनी नसीब में। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब इस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, और जब इसको खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो लोग, अब यहाँ लिस्ट बना लीजिए जन्नत में जाने वालों की, दाए मून से तक आखिर से शुरू से लेकर, जैसे हमने सूरत मोमिनून के शुरू में एक लिस्ट बनी हुई देखी थी, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे आती गई। तो यहाँ जन्नत की कीमत क्या है, क्या कीजिए मैं और आप क्या करें, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीन फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम। मगर वो लोगों की सैब से बचे हुए जो नमाज पढ़ते हैं, जो अपनी नमाजों की हमेशा पाबंदी करते हैं, जिनके मालों में साइल और महरूम का एक मुकर्रर हक है, जो रोजे जजा को बरहक मानते हैं, जो अपने रब के अजाब से डरते हैं क्योंकि इनके रब का अजाब ऐसी चीज नहीं जिससे कोई बेखौफ हो, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं बजुस अपनी बीवियों या अपनी ममलूका औरतों के, जिनसे महफूज ना रखने में इन पर कोई मलामत नहीं, अलबत्त वह कुछ और चाहें वो हावस करने वाले हैं, जो अपनी अमानतों की हिफाजत और अपने अहद का पास करते हैं, जो अपनी गवाहियों में राह रास पर कायम रहते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, उलाइका फी जन्नाति मुकरमून, ये लोग इज्जत के साथ जन्नत के बाग़ों में रहेंगे। कितना अच्छा लगता है, दुनिया में अल्लाह के लिए झुके, अल्लाह ने वहाँ इज्जत दे दी। वहाँ क्या पढ़ा था अपने सूरत मोमिनून में, उलाइका हुमुल वारिसून, और जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनाया गया, यहाँ इज्जत की बात है। तो आज थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला की बात को मानना अगर मुश्किल लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला वहां आपको सब वापस करेगा। फिर आगे कुफार की हरकतों पे कुछ तबसरा, फमालिल्लज़ीन कफरू की बलक मुहतीन, पस नबी क्या बात है, ये मुनकरीन दाएं और बाएं से गिरो दर गिरो तुम्हारी तरफ दौड़े चले आ रहे, क्या इनमें से हर एक ये लालच रखता है कि वो नेमत भरी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, हरगिज नहीं, हमने जिस चीज से इनको पैदा किया इसे वो खूब जानते हैं, पस नहीं मैं कसम खाता हूँ मशरिकों और मगरिबों के मालिक की, हम इस पर कादिर हैं कि इनकी जगह इनसे बेहतर लोग ले आए और कोई हमसे बाजी ले जाने वाला नहीं, बस इन्हें अपनी बेहुदा बातों और अपने खेल में पड़ा रहने दो यहाँ तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाए जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, जब ये अपनी कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़े जा रहे होंगे जैसे अपने बुतों के स्थानों की तरफ दौड़ रहे हों, इनकी निगाहें झुकी होंगी शर्म के मारे, जिल्लत इन पर छा रही होगी, किस वजह से कि दुनिया में अल्लाह के दीन को हल्का समझा। ज़ालिकल यौमुल लज़ी कानु युअदून, ये है वो दिन जिसका इनसे वादा किया जाता रहा, ये बहसें करते थे, अमल का इरादा ही कोई नहीं था, यहूद व यलबू, ऐसी अमल इंसान के उसको जहन्नुम में ले जाने का जरिया बनते हैं, अपने आप को अल्लाह के दीन पर तबसरा करने वाला शख्स करार देते थे कि मेरा काम यह है कि इस दीन पर तबसरे करूं, अच्छा आज के दौर में क्या जाए तो कल के दौर में क्या, अच्छा अमेरिका में रहते हुए तो कैसा दीन चाहिए तो पाकिस्तान में कैसे और अमेरिका में और सऊदी अरब में, यही खेल खेलता रहता था, इफ्स एंड बट्स में पड़ा रहता था कि ये क्या वो क्या, अल्लाह ताला के तैसे सब लोगों को वहां शर्मसार करके खड़ा कर दूंगा। देखिए मेरा और आपका क्या काम है तबसरे करने का, मेरा और आपका काम सिर्फ इतना कि मान जाओ, आज तक हमने अमेरिकन लॉ पे तो तबसरे किए कोई नहीं, कर भी लेंगे तो फायदा नहीं, हाँ जाइए सेनेट में पहुंचिए कैबिनेट में जाइए तबसरे फायदा भी दें, कोई कानून बदलें, घर बैठे बातें करने से क्या होता है, तो मैं और आप शरीयत पे जितने इतराज करना चाहे कर लें, जितनी चार शादियों पे बातें कर लें, पर्दे को हिजाब को तंबू कह दें, सूद को हराम हलाल और एक्सट्रीमिज्म कह दें, फर्क क्या पड़ेगा, अल्लाह ने मेरे और आपके कहने पे अमेंडमेंट तो कर दी कोई नहीं शरीयत में, क्योंकि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह तो नबी को कह दिया कि आज के दिन दीन पूरा खत्म, ये लॉ खत्म, नो अमेंडमेंट एट ऑल, दुनिया के लॉज में तो कुछ साल के बाद फिर अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, अल्लाह ने कहा सॉरी नहीं हो सकता, ये पीडीएफ कॉपी इट कैंट बी चेंज एनी मोर, खत्म, इसके बाद मान लो, नहीं मानेंगे तो हमारा नुकसान है, मान जाएंगे तो हमारा फायदा है, अल्लाह को क्या लगेगा, और अल्लाह में उस दिन की रुसवाई से बचाए। अगली सूरत सूरत नूह है, वही दावत के टॉपिक पे दोबारा चल रहा है, ये दाई दीन का दर्द है। आज उम्मत वसत को नूह बनना है, लिखिए अपने लिए। अगर चाहते हैं ना कि हम इस दुनिया को कुछ खैर दे दें और इंसानियत की खिदमत करके जाएं और उम्मत वसत का किरदार अदा करें, तो हजरत नूह जैसी कमिटमेंट नताइज से बेनियाज, किसी किस्म की अप्रिसिएशन उनको नहीं चाहिए, सेल्फ प्रोजेक्शन उनको नहीं चाहिए, हालात टोटली उनके अगेंस्ट खड़े हैं, जमाते गिरोह साथ चलने के लिए तैयार नहीं, अकेला अल्लाह का बंदा खड़ा है। अल्लाह ने उसका अजर साबित कर दिया। पढ़ेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें नूह जैसी कमिटमेंट अदा कर दे दीन के कामों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अंजिर कौमक मिन कबल यातियहुम अज़ाबुन अलीम। हमने नूह उनकी हिदायत के साथ के अपनी कौम के लोगों को खबरदार कर दे कबल इसके कि इन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। का बुनियादी नुकता, लोगों को इंतजार करो, अल्लाह की पहचान कराओ, जहन्नुम के अजाब से डराओ, फिकी पैसों में मत डालो, इधर उधर की बातों में ना पड़ो, बिग इश्यूज को छोड़कर छोटे छोटे इश्यूज को बुनियाद ना बनाओ। قال يا قوم اني لكم نذير مبين। उसने कहा है मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए साफ साफ खबरदार करने वाला पैगंबर हूँ, तुमको आगाह करता हूँ कि अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो और मेरी इताअत करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक बाकी रखेगा। हकीकत यह है कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जब आ जाता है तो फिर टाला नहीं जाता। काश तुमको इसका इल्म हो, बंदे बन जाओ, रब को उसका मुकाम दे दो और गुनाहों की माफी मांगो। ये तीन इंग्रेडिएंट्स थे हजरत नूह की तबलीग के, इसी की जरूरत है। पिछले गुनाहों पे माफी मांगो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, उसकी पहचान करो और साथ ही साथ अपना मुकाम पहचान लो, और अल्लाह ताला हम इसकी तौफीक दे दे। अब जरा उनकी दावत उन्हीं के जुबान से सुनिए, और आप कहेंगे ये हजरत नूह शिकायतें लगा रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, गिबते कर रहे हैं, नहीं, ये अपने रब के साथ दुख सुख कर रहे हैं। और दाई दीन दिन में जितना मजबूत होकर लोगों के सामने खड़ा होता है ना, रातों को उतना अल्लाह के सामने टूट के रोता है कि अल्लाह इन लोगों को क्या हो गया। कैसे नूह ने शिकायतें लगाई कौम की अल्लाह के सामने, قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا। उसने अर्ज किया मेरे रब, मैंने अपनी कौम के लोगों को शबो रोज पुकारा, यानी रात को पुकार सका तो रात को पुकारा, दिन को पुकार सका तो दिन को पुकारा, मगर मेरी पुकार ने इनके फरार ही में इजाफा किया। टू मैनी ऑप्शंस जो मिल गई, चलो सुबह नहीं रात को जाएंगे, रात को क्यों नहीं रह गया, सुबह जाते हैं, और जितनी ऑप्शन ज्यादा मिलती जाती है उतना इंसान रिलैक्स है और फिर कुछ भी नहीं करते। और जब भी मैंने उनको बुलाया ताकि तू इन्हें मुआफ कर दे, देखिए नबी की तड़प कि लोगों को अल्लाह मुआफ कर दे, इन कानों में उंगलियां ठोंस ली। इमेजिन करें अपने आप को, बड़े तपाक अर्थ से लोगों को दीन की बात बताने के और लोगों ने कानों में उंगलियां ठोंस ली कि हम तेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, वी डोंट वॉन्ट टू लिसन यू, और अपने कपड़ों से मुंह ढांक लिए ताकि तेरी शक्ल भी नजर ना आए, और अपनी रविश पर अड़ गए और बड़ा तकबर किया, यानी जो करते थे अब वापिस वही करना चाहते हैं। फिर मैंने इनको हांके पुकारे दावत दी, फिर मैंने ऐलानिया भी इनको तबलीग की और चुपके चुपके भी समझाया, यानी वन ऑन वन बेस पे बात करने वाली थी तो वो जाके की, पर्सनल मैटर्स पे इनको महफिल में शर्मिंदा नहीं किया, और जो जनरल बातें थी जो सब में ही दिखे, जो एक अमूमी रुझान था तो वो सबके बीच में भी का हर तरह किया और चुपके चुपके भी किया, लेकिन नहीं माने। मैंने कहा क्या दावत थी, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम इदरारा। फिर मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा। इस्तग़फ़ार के फवायद, और आज वक्त उम्मत वसत को, उम्मत मुस्लिमा को इज्तमाई तौबा की जरूरत है ताकि ये सारे फायदे हमें भी नसीब हों और हमारे मुल्कों के कहत खत्म हो और वहाँ की महंगाई और वहाँ की करप्शन खत्म हो। फरमाया जब तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो क्या होगा, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, تمہیں کیا ہو کہ تم اللہ سے کسی وقار کی کوئی امید نہیں رکھتے؟ یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تو یہ سمجھتے ہو کہ ان کی بڑی عزت ہے، ان کے سامنے جا کے کوئی گستاخی نہیں کرتے، لیکن اللہ کی طرف بلانے والے کو اتنا لٹھوں سمجھتے ہو؟ اپنوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو جو اللہ والے کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ ہم سب سوچیں، آج ہماری نظر میں جو مقام دنیا والوں کا ہے اور دنیا کی طرف بلانے والوں کا ہے، چاہے یا کسی اور کے، کیا وہ دین ہے؟ ہم کہتے ہیں تھرڈ کلاس لوگ ہیں، چونکہ یہ دین سکھاتے ہیں، ان کو جو مرضی کہہ دو اور جو مرضی ان سے سن لو. عام طور پہ رجحان یہی دکھتا ہے، الا ماشاءاللہ. حضرت نو کو انہوں نے اتنا چھوٹا سمجھا کہ یہ ایک مفت کا بندہ، فری ہے، مولوی ہے، نہ اس کو کوئی کام ہے نہ کچھ ہے، یہ آ کے ہمیں ستاتا رہتا ہے، جاؤ اس کو کوئی کام پہ لگاؤ، یہ کوئی کاروبار کرے، یہ بھی ذرا فیکٹری کا مالک ہو، اس کو پتہ چلے ہماری کتنی مجبوری ہیں، یہ بھی ذرا کوئی بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے، اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہوتا، اس کو لگ پتہ جاتا کہ سود کے بغیر کام کیسے کرتے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ تھا، یہ قوم کا حال تھا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہو کہ تمہیں اللہ کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کے ساتھ سے عزت اتار دیتے ہو، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تم کو بنایا. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بہ تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنا دیا؟ چاند نور ہے، سورج چراغ ہے، اصل سورج سے آتا ہے، چاند اس کو ٹھنڈا کر کے انسانیت کو دیتا ہے. یہی ہے آج کے دور میں کرنے کا دور. قرآن میں اگر کمال ہے نا یا جلال ہے، تو حدیث میں نبی کی صورت میں کمال ہے. قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کو بعض دفعہ واقعی محسوس ہوتا ہے کہ جلالی کلام ہے، ہو بھی کیوں نا، ہے جو ذوالجلال کی طرف سے. اور جب سیرت اور نبی کی زندگی پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ایسی ٹھنڈی اوس اپنے دل پہ پڑتی دکھتی ہے، پھر آپ کو یہ قرآن پکڑنا آسان لگتا ہے کہ ہاں جیسے نبی نے پکڑا تھا یہی اچھا تھا، ہم نے تو آج تک اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح سے اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی. کیا بجلیاں نہ ٹوٹی ہوں گی نوح کے دل پر جب لوگ بات مان کے نہ دیں، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے. یعنی دین کی دعوت بھی تھی تو کوئی دنیا کی بہت بڑی شخصیت کی طرف سے بھی دعوت تھی، دین کو چھوڑ کر یہ ادھر چلے گئے کہ آج تو ہم اویلیبل نہیں ہیں. حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ وہاں سے مراد نہیں ملنی تھی، مراد ادھر سے ملنی تھی. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، یہ اس طور کے پانچ بت تھے، اور نہ چھوڑو ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوس کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. اور پھر وہی ہوا جس کا نبی کو ڈر تھا، مما خطیاتہم اغرقوا فادخلونا، اور خطاؤں کے غرق کیے گئے، طوفان میں ڈوب گئے، لے دیے گئے، یہ ہے برزخ. قومیں ڈوبتی پانی میں، لیکن اس وقت میں کہ برزخ روحوں کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ نہیں. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے کی مدد نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. یہ آخری باتیں 950 سال کی تبلیغ کے بعد یہ لفظ زبان پر آ رہے ہیں، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبار. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لگا دے. تو کیا پتہ چلا کہ دین کے راستے میں ہمیشہ لوگ آپ کو پھولوں کے گلدستے پیش نہیں کرتے، لوگ ہمیشہ آپ کے سامنے جھکے ہوئے نہیں ہوں گے کہ آپ اللہ کی بات ان کو سنائیں اور وہ آپ کے تھینک فل ہوں. بہت سارے لوگوں کو حضرت نوح والے حالات سے بھی دو چار ہونا پڑے گا، لیکن یہ ان کی ناکامی نہیں، اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے.